वो भूखी थी, मुझे अब समझ आया। एक सदी के बाद वो मुझे निवाला खिला रही थी, मगर खुद भूखी थी। गौरी की अम्मा, हम बच्चों की देखभाल के लिए वो कभी कभी आ जाती थी। उनका पति पुलिस में सिपाही था, बड़ा परिवार था, बेटा बहू उनके बच्चे। आंख से भी कम दिखता था गौरी की अम्मा को, मगर उनके घर के बच्चे भूखे ना रह पाए। वो इसलिए हमारे यहाँ आकर हमारे घर के बच्चों की देखभाल किया करती थी। मुझे याद नहीं उन्हें कितना पैसा मिला करता था मेरे घर से, मुझे सिर्फ उनके निवाले याद हैं। उनकी गोदी में बैठकर वो खाना खाना, वो दाल चावल के लड्डू। मुझे खाना खिला के वो अपने घर चले जाया करती थी, और जाने से पहले वो जो किनारे पीतल का पानी का टैंक था ना, उससे एक लोटा पानी भर के पीती थी। वो गुटकने की आवाज़ मुझे याद है। गौरी की अम्मा, वो भूखी थी, मुझे अब समझ आया। गौरी की अम्मा उस समय भूखी थी, मेरा पेट भर रही थी, मगर वो खुद भूखी थी। ये किसी का वक्त बुरा और किसी का अच्छा क्यों होता है? ये कोई तख्त पर तो कोई जमीन पर क्यों सोता है? अब समझ आया भूख क्या होती है। अब गौरी की अम्मा है नहीं, मैं उन्हें अपने हाथों से निवाला खिलाना चाहती हूँ। एक बार गौरी की अम्मा, एक बार किसी भी रूप में वापस आ जाओ।
नमस्कार। कॉन्वर्सेशन विद विवेक शर्मा, एपिसोड नंबर 9। आज मैं आपको अपनी फिल्मी दुनिया, फिल्मी जर्नी का एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाने वाला हूँ, जो मेरे और प्रोड्यूसर श्री यश जौहर जी के बीच में गुजरा। यश जौहर साहब बहुत फेमस रहे हैं, अग्निपथ जैसी फिल्म, दोस्ताना जैसी फिल्म, डुप्लीकेट, गुमराह, सभी बड़ी बड़ी फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे हैं, और अपने कड़क नेचर के लिए जाने जाते थे। उनकी बात करने का अपना एक स्टाइल था। अरे यार क्या कर रहे हो, कितने असिस्टेंट आ गए हो तुम लोग यार, महेश जी ये क्या चल रहा है, 25 लोग खड़े हैं मेरे सेट पे। तो उनका नाम रख दिया गया था टॉम अंकल, ये नाम उनको शाहरुख यानी शाह खान ने दिया था, और हम उनको प्यार से टॉम अंकल बोलते थे। और डुप्लीकेट फिल्म में मैं एसोसिएट डायरेक्टर था, तो मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। मुझे राइटर्स के सिटिंग रूम से भाग के अपने डायरेक्टर बॉस को सीन पढ़ाने जाना पड़ता था, उनका जो महालक्ष्मी में यश जौहर साहब का ऑफिस था वहाँ जाना पड़ता था, अकाउंट्स हैंडल करना पड़ता था, प्रोडक्शन टीम उतनी एक्टिव नहीं थी, प्रोडक्शन कई बार हैंडल करना पड़ता था। यश अंकल के पास अपनी एक फीएट थी, उस फीएट से कई बार मुझे वो महालक्ष्मी से जुहू तक ड्रॉप किया करते थे। तो हुआ यूं कि इसी तरीके से काम करते करते एक बार सिटिंग हुई, स्क्रिप्टिंग हुई और कुछ सीन्स लिखे गए। तो पहले हाथ से सीन लिखे जाते थे, उनकी जेरोक्स यानी फोटो कॉपी बनाई जाती थी, कार्बन रख के उनकी कॉपीज़ बनाई जाती थी। तो कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी कि कुछ पैसे लगेंगे, कुछ स्टेशनरी लाना है। तो यश अंकल ने मुझे 300 रुपये दिए और बोला ये लो 300 रुपये, और जितना काम होगा उतना खर्च करना, बाकी पैसे मुझे वापस करना। तो मैं बोला हाँ वापस कर दूंगा आप। नहीं मुझे वापस चाहिए। मैं बोला जी बिल्कुल वापस कर दूंगा आपको। दिन भर काम हुआ, सीन्स वगैरह की फोटो कॉपी हुई, जो कार्बन पेपर लाना था, जो जो भी पेपर वगैरह खरीदने थे, स्टेशनरी खरीदना था, और उस खरीदारी के बाद बचे 133, 133 रुपीज़। तो शाम हो गई, करीब 5 साढ़े 5 बज रहा था। तो मैंने ऑफिस वालों से पूछा अरे यश अंकल कहाँ रहते हैं? तो बोले क्यों? मैं बोला यार जाना है मुझे, उनको पैसे वापस करना है। तो पता चला कि वो तो वहाँ टाउन साइड में रहते हैं, हैंगिंग गार्डन के आसपास कहीं रहते हैं। किसी ने ये एड्रेस बताया, किसी ने वो एड्रेस बताया, फाइनली मुझे उनका एड्रेस मिल गया। तो मैंने जुहू से बस पकड़ी, सेंटा क्रूज स्टेशन आया, सेंटा क्रूज से मैंने चर्च गेट तक की ट्रेन ली, वहाँ से उतरा। उसके बाद मुझे एड्रेस समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वहाँ से पैदल निकला। करते करते मैं मालाबार हिल्स में उनके फ्लैट में पहुँचा और घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला। यश अंकल ने जैसे ही मुझे देखा, क्या है? तो मैंने सर वो आपने 300 रुपये दिए थे तो ये 133, 133 रुपये बचे हैं। ही जस्ट लुक्ड एट मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देखते रहे मुझको बहुत देर तक देखते रहे। फिर मेरे से बोलते अंदर आ। तो मैं पहली बार उनके घर के अंदर गया, तो वहाँ करण जौहर बैठा हुआ था, दही खा रहा था। और यश अंकल ने बोला, मैं इतने सालों से फिल्म वर्ल्ड में हूँ, फिल्मी दुनिया में हूँ, प्रोडक्शन भी करता रहा हूँ, प्रोड्यूसर भी बना हूँ, आज पहली बार मेरे 40 साल के करियर में मुझे कोई पैसा वापस करने आ रहा है, और वो भी 133 रुपये। कहाँ का है तू? तो मैं ला, सर मैं जबलपुर का हूँ। तो उनकी स्टाइल थे ऐसा, मूछ पे ऐसा हाथ फेरते थे, बोले मैं भी 64 से 69 जबलपुर में फॉरेस्ट में कुछ काम किया करता था, कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे परिवार के बारे में, जर्नी के बारे में पूछा, और उस दिन उस कड़क नारियल की तरह कड़क यश जौहर जी से मेरा आइस ब्रेक हुआ। वो अंदर बहुत सॉफ्ट थे, प्रॉब्लम यह था कि वो उसूलों के पक्के थे। जिसको लोग कड़क या इरिटेबल समझते हैं, वो उसूल से चलने वाले बंदे थे। टाइम पर आना, टाइम पर जाना, हिसाब किताब बराबर। वो 133 रुपये उनके प्रति, उनके मन में जो जो लोगों के प्रति एक अविश्वास था, उसको दूर कर गया। उसके बाद उन्होंने ऑफिस में इंस्ट्रक्शन दिया कि जिस बिल पे विवेक साइन करता है वो बिल अप्रूव करो। मुझे मेरे फादर ने एक बात सिखाई थी कि जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारा नहीं है, तुम उसको नहीं रख सकते। वो चाहे 133 रुपये हो, चाहे 13 रुपये हो, चाहे 3 पैसे हो, वो तुम्हें उनको वापस करना ही पड़ेगा। ये आप भी अच्छे से समझ लीजिए, जो आज की डेट में लोग पैसों के लिए बेईमानी करते हैं, रिश्तों में खेल करते हैं, ये आपके चरित्र को, आपकी परवरिश को, आपके माँ बाप को रिफ्लेक्ट करता है। मैंने वो 133 रुपये वापस कर दिए इसलिए नहीं कि मुझे उनका कोई विश्वास जीतना था या मुझे कुछ दिखाना था, वो मेरा चरित्र है। चरित्र जिसकी आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा कमी है, हमने चरित्र बनाने और बनने छोड़ दिए हैं। इसके लिए कहानियों में भी चरित्र नहीं होते, अब फिल्मों में चरित्र नहीं होते, आर्टिकल्स में चरित्र नहीं होते। पैसा लेन देन पूरी ज़िंदगी नहीं है, रिश्ते, विश्वास। आज वो अगर मैं 133 रुपये शायद उनको वापस नहीं करता, तो एक बहुत बड़े महान प्रोड्यूसर के साथ मेरे रिश्ते अच्छे नहीं होते। मगर मेरे फादर ने हमेशा ये बताया कि किसी को पता हो चाहे किसी को पता ना हो, तुमको पता है कि वो तुम्हारे पैसे नहीं है, वापस कर दो और अपना चरित्र बना कर रखो। उसके लिए आपको किसी सुप्रीम कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई अग्रीमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा कुछ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना चरित्र लेकर चलो, और याद रखना पैसों के लिए कभी नियत खराब मत करना। जिसको जो देना है वो देना है, जो आपका नहीं है वो किसी और का हक का है, उसको देना है। फिल्म लाइन में इवन क्रेडिट को लेकर बहुत मारामारी होती है कि किसने लिखा, किस पे किसका क्रेडिट आना चाहिए, किसको कितना मिलना चाहिए। जो बीज होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेरी ज़िंदगी में जब यश अंकल के साथ ये इंटरेस्टिंग वाक्या हुआ, उसके बाद फिर उनकी सेक्रेटरी पिया मिराजकर का मुझे फ़ोन आया कि अरे विवेक शर्मा, तुमने क्या जादू कर दिया यश अंकल के ऊपर, ही इज़ तो लाइक नाउ यू आर हिज ब्लू आइड बॉय। तो मैंने बोला नहीं, कोई जादू नहीं किया, मेरा फ़र्ज़ था, मतलब बिना कहे मुझे वो पैसे वापस करने थे। उसके बाद महेश भट्ट साहब ने मुझे बोला कि कमाल है, जो इंडस्ट्री के 2-3 सबसे ज़्यादा कड़क लोग हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं। क्योंकि मैं बनावटी नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी पे इंप्रेशन मारने के लिए नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ, जैसा जबलपुर से मुझे मेरे माता पिता ने परवरिश दी, अपब्रिंगिंग दी है, मैं उसी को फॉलो करता आ रहा हूँ। इसलिए मुझे किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अपना चरित्र फॉलो कर रहा हूँ। और चरित्र बनना और चरित्र को फॉलो करना जो है वो बहुत आसान भी है, डिफिकल्ट भी है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको बोलेंगे बी प्रैक्टिकल यार, क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ा ना पूछने वाला, जब पूछेंगे तब दे देना 133 रुपीज़, उसमें क्या है। नहीं, वो आपका नहीं है, वो पैसा आपका नहीं है, और वो आपको अंदर से कचोटेगा। जो 133 रुपये आप खाने वाले हैं किसी के, वो आपको करोड़ों में, ना जाने कौन किस प्रकार की बीमारी में आपके पैसे निकल जाने वाले हैं, या किसी भी तरीके से, क्योंकि कर्मा जो है वो किसी को नहीं छोड़ता। तो आप ये बात अच्छे से ध्यान में रखिए कि आप जिस भी वॉक ऑफ लाइफ में हो, अपना चरित्र मत छोड़िए। आपका चरित्र जो हमारी भारतीयता की पहचान है, जो हमारी संस्कृति की पहचान है। आज की सोसाइटी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। मुझसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं इस उम्मीद से कि प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, सैलरी आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा। जैसे ही प्रोजेक्ट रुकता है या जैसे ही पैसे आने बंद होते हैं, गायब हो जाते हैं। ये आपका चरित्र है, यह आपका, आपकी परवरिश का रिफ्लेक्शन है। नहीं, अच्छे और बुरे वक्त में खड़े रहना, जो आपका है आपका है, जो आपका नहीं है उसे वापस करना, ये आपका चरित्र है, जो हमारे समाज में धीरे धीरे बहुत कम हो गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यंगस्टर्स इसे वापस चेंज करेंगे। बड़ों का रिस्पेक्ट करना, अदब करना, जी जनाब करके बात करना, और डांट खा लेना, उस पर पलट कर जवाब नहीं देना, और वो 133 रुपये वापस करना जो आपकी जेब में किसी और के हैं, आपके नहीं है। तो आज का ये एपिसोड मैं आपको यही बताना चाहता था कि ज़िंदगी में आपको गलत जाने के बहुत मौके मिलेंगे, मगर सही चलने का जो मज़ा है ना, वही बात है, हाथ से पिसी चटनी और मिक्सी से पिसी चटनी। मैंने अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुली बिना डिविएट हुए, देखिए मुझ में कोई बुराई नहीं है जिसे समाज बुराई कहता है, मैं शराब सिगरेट लड़कीबाजी पार्टी कुछ भी नहीं करता। मेरे यहाँ अभी भी एकादशी में सत्यनारायण की कथा होती है, मैं अभी प्रसाद लोगों को बांटता हूँ, रिश्ते निभाता हूँ, क्योंकि मुझे 133 रुपये वापस करना आता है। अब आपकी बारी है, आप भी बताइए कि आपके माँ बाप ने आपको बहुत अच्छी परवरिश दी है और आप किसी का हक नहीं मारेंगे, जो आपका नहीं है वो आप उसे वापस करेंगे। लेट्स बिल्ड अ न्यू कैरेक्टर ऑफ आर नेशन, समाज को फिर से जिंदा करते हैं, फिर से भारतीयता को वापस लेकर आते हैं। जय हिंद।